हाँ, ये उनका दिव्य कर्म है। टीले के अंदर दबे पड़े हैं और दूध जो गिरा रही है वो पूरा उनके मुंह में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। तो श्री रूप के आनंद की सीमा न रही, जान गए कि जिसकी उपासना के लिए गौरांग देव ने आज्ञा दी थी वो यहीं इसी स्थान पर है। भगवान ने आज्ञा दी थी कि लुप्त अर्चा विग्रहों को जो है निकालो, अर्चा विग्रहों की पूजा की स्थापना करो, तो ये बताया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो समझ गए। इन्होंने ब्रजवासियों को एकत्र किया और सावधानी से टीला की खुदवाई कराई, बड़ी सावधानी से, कि भगवान को चोट ना पहुंचे कि नहीं, ऐसे थोड़ी फावड़ा मार मार करके एकदम खोदेंगे, बड़ी सावधानी से खोदा। तो 10 फुट नीचे, कितना, 10 फुट नीचे, 10 हाथ नीचे, 10 हाथ तो 1 फुट से ज्यादा ही होगा, 10 हाथ नीचे श्री गोविंद विग्रह को सबने देखा और बाहर निकाला। तो इस प्रकार से गोविंद अर्चा विग्रह प्रकट हुए, है ना। हरि बोल। राधा गोविंद की झूलन यात्रा भी तो चल रही ना इस समय, गोविंद हैं, गोविंद अर्चा विग्रह प्रकट हुए। अच्छा, अब एक और घटना इनके विषय में, महाप्रभु चैतन्य की आज्ञा से रूप वृंदावन में आए। यहां आकर के इन्होंने विदग्ध माधव और ललित माधव का जो है लीलाएं का दर्शन, वो मतलब इन्होंने दर्शन की भगवान की, विदग्ध लीलाओं का और ललित लीलाओं का दर्शन किया, जिस इनके हृदय में एक नाटक लिखने की इच्छा जगी और इसको दृष्टिकोण में रखकर वृंदावन में नाटक का जो है अपने मन में लिखना आरंभ किया। अभी मन में ही जो है वो रचना कर रहे हैं नाटक के। इधर रथ यात्रा के दर्शन के साथ प्रभु के दर्शन की इच्छा जागी कि रथ यात्रा होने वाली है जगन्नाथपुरी में, तो वृंदावन से जाएं महाप्रभु के दर्शन करें। अतः रूप नीलाचल की ओर चल पड़े, वृंदावन से नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी पैदल ही चलते थे उस समय, सोचो पैदल है? चल पड़े। यात्रा पथ में एक ऐसे नाटक की रचना का चिंतन करते थे जिसमें ब्रज की और मथुरा की लीलाओं का एक ही नाटक में सम्मिलन हो, है ना। किंतु उड़ीसा के सत्यभामापुर नामक ग्राम में रात्रि को सत्यभामा देवी द्वारा इन्हें स्वप्न हुआ। उस गांव से पहुंचे सत्यभामापुर गांव, तो सत्यभामा का ही गांव है, तो वहां स्वप्न में दर्शन हुआ। आदेश दिया, आदेश हुआ कि प्राणनाथ श्री कृष्ण की द्वारका लीला का पृथक वर्णन किया जाए। सत्यभामा देवी का स्वप्न आदेश चिंतन करते हुए श्री रूप नीलाचल पहुंचे और श्री चैतन्य और जगन्नाथ के दिव्य दर्शनों से श्री रूप के आनंद की सीमा न रही। घोड़ी वैष्णव ने श्री रूप को देखकर बहुत सुख माना, है ना। तो सत्यभामा जी ने उनको आदेश दिया कि 2 नाटक अलग अलग लिखो, जिस नाटक में वृंदावन की लीलाएं उसमें द्वारका की लीलाएं नहीं, जिसमें द्वारका की लीलाएं वृंदावन की लीलाएं नहीं। इस प्रकार से रूप गोस्वामी के बारे में हमने कुछ चर्चा की है। एक और चर्चा, श्री रूप की आज्ञा से नहीं, श्री चैतन्य की आज्ञा से रूप गोस्वामी ने पश्चिम उत्तर भारत में सर्वप्रथम वैष्णव आचार और भक्ति रस का प्रचार कर लुप्त तीर्थों के उद्धार के साथ साथ वृंदावन में श्री मूर्तियों की स्थापना और मंदिर निर्माण की रूपरेखा रची। आज ब्रज और वृंदावन का वास्तविक रूप जो दिखाई दे रहा है उसको निखारने में श्री चैतन्य और उनके परम प्रिय श्री रूप आदि 6 गोस्वामी और गौड़ी वैष्णवों का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो उस समय क्या था, चैतन्य महाप्रभु के समय में वृंदावन क्या था, घोर जंगल था, कोई मंदिर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई सड़कें नहीं, कुछ नहीं था, है ना, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। इतना होने पर भी अद्भुत वैराग्य है, कहीं एक रात से अधिक एक स्थान पर नहीं रहते थे, रूखा सूखा ब्रजवासियों के यहाँ मिल जाता वही भोजन करते, पहनने के लिए फटा बहिर्वास और फटे कपड़ों की गुदड़ी, ये सदा श्री कृष्ण कीर्तन में मस्त रहते थे, खाने पीने सोने की चिंता नहीं थी। अब एक घटना है, जिस समय नंदग्राम के कदम टेर पर भजन करते थे, कौन? रूप गोस्वामी। उस समय सनातन जी वहां पधारे, तो सनातन तो बड़े भाई हैं, तो सनातन का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, अथवा अपने बड़े भाई के सम्मान के लिए इनके मन में विचार उठा कि आज यदि दूध चावल आदि की खीर सामग्री उपलब्ध हो जाए तो उससे भोग लगाकर बड़े भाई को प्रसाद खिलाऊं, नहीं तो ये लोग कभी खाते नहीं कुछ, वही आटा लें और उसका टिक्कड़ बनाए आग में सेक करके और उसी को ही नमक लगा करके खाते थे, या बिना नमक के खाएं जैसे भी हो उसी को खाते थे, है ना। मन में ऐसा विचार आते ही श्री राधा जी एक गोप कन्या के रूप में दूध चावल चीनी मेवा सब सामग्री लेकर आ पहुंची। बोली, बाबा ये सामग्री मेरी मैया ने आज आपके ठाकुर भोग के लिए भेजी है। राधा रानी ने अपना परिचय नहीं दिया, एक बालिका आई कि मेरी मैया ने भेजी है ठाकुर के भोग के लिए, बाबा ऐसा बोले। रूप गोस्वामी बोली, लाली सामग्री तो लाई हो पर खीर बनाए कौन और कैसे बनाए? रूप गोस्वामी कहते, खीर कौन बनाएगा और कैसे बनाएंगे? तो श्री जी ने कहा, बाबा तू केवल कंडे बीन ला, खीर मैं बना देती हूँ। तू कंडे ले आ, मैं बना देती हूँ खोए। श्री रूप कंडे बीन लाए और राधा रानी ने हाथों से खीर बनाई और चले गई। ठाकुर का भोग लग गया, सनातन आए, आगे प्रसादी खीर परोसी गई, अद्भुत स्वाद था राधा रानी का बनाया। सनातन गोस्वामी ने पाई खीर, अद्भुत स्वाद था। सनातन पूछ बैठे, अलौकिक खीर ये कैसे बनी, सामान कैसे मिला? श्री रूप ने सब वृत्तांत कह दिया कि मेरे मन में इच्छा थी, एक बालिका लेके आई, उसी ने बना भी दिया। तो सनातन ने कहा, रूप ऐसा फिर कभी मन में मत लाना, वो गोप कन्या साक्षात राधा रानी थी। खा करके समझ गए राधा रानी। देखो ऐसा जो है टेस्टर होना चाहिए, टेस्टिंग करने के लिए, कि खा करके बताए राधा रानी थी। उनको हमारे लिए तुम्हारे लिए कितना श्रम उठाना पड़ा। श्री रूप गोस्वामी व्याकुल उठे, प्रेमाश्रुओं से नहा गए, मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। तो ये है आदर्श, गोस्वामियों का आदर्श इस प्रकार। श्रील रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की गौरीदास पंडित का आज तिरुभाव दिवस है और ये समकालीन है, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है और पहले की लीला में। रूप गोस्वामी तो संन्यास समय जो है, संन्यास के समय इनका मिलन हुआ था, लेकिन जो पहले की जो लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, संन्यास लेने के तुरंत बाद है, तो कुछ घटना इस तरह की है। गौरीदास पंडित तो ब्रज लीला में जो 12 गोपाल थे, द्वादश गोपाल, तो वे गौर लीला में कौन हुए हैं? श्री दामा सखा जो थे तो वो रामदास या अभिराम ठाकुर बोला जाता है। सुबाहु सखा थे वो धारण दत्त ठाकुर, महाबल सखा थे कमलाकर पिपलाई, लवंग सखा थे वो काला कृष्णदास, सुबल सखा गौरीदास पंडित। तो जो जिनका आज तिरुभाव दिवस है वो कौन है ब्रज लीला में? सुबल सखा है। वसुदामा सखा ये गौर लीला में धनंजय पंडित, अर्जुन सखा परमेश्वरी दास, अर्जुन सखा ये कुरुक्षेत्र वाले नहीं है, ये ब्रज के अर्जुन सखा है परमेश्वरी दास ठाकुर, और नागर ये पुरुषोत्तम दास, स्तोक कृष्ण पुरुषोत्तम दास, महाबाहु सखा महेश पंडित, मधुमंगल सखा श्रीधर खोलवेचा, सुदामा सखा सुंदरानंद ठाकुर। तो ये गौरीदास पंडित के बारे में गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है, सुबुलो यहाँ प्रिया श्रेष्ठा स गौरीदास पंडिता, जो ब्रज लीला में सुबल सखा श्रेष्ठ हैं वो गौरीदास पंडित हैं। तो नित्यानंद प्रभु की शाखा में इनका नाम आता है गौरीदास पंडित का। इनका जन्म हुआ था श्री कंसारी मिश्र पिता थे और माता थी कमला देवी, और इनका जो गांव था वो था सालीग्राम। सालीग्राम इकट्ठा करने तो सालीग्राम भगवान हो जाते हैं, और वैसे सालीग्राम अलग अलग है, ग्राम माने गांव, सालीग्राम इनका जो जन्म स्थान है वो सालीग्राम है। बाद में ये अपने बड़े भाई श्री सूर्यदास से आज्ञा लेकर गंगा के किनारे अंबिका में आकर रहने लगे। अंबिका कालना बहुत प्रसिद्ध स्थान है ना? तो अपने बड़े भाई सूर्यदास से आज्ञा लेकर के यहां आ गए। श्री सूर्यदास नित्यानंद प्रभु के ससुर, श्रीमती जहानाबा के पिता हैं, और सूर्यदास के बड़े भाई थे दामोदर, जिनकी कन्या थी वसुधा देवी, है ना। तो गौरीदास जो है छोटे हैं, उनके दोनों बड़े भाई जो है नित्यानंद प्रभु के ससुर हैं। नित्यानंद प्रभु से इनका अति निकट संबंध था। गौरीदास की पत्नी का नाम था विमला देवी। इनके दो पुत्र हुए श्री बलराम और श्री रघुनाथ, है ना। तो अब ये घटना जो है वो उस समय की है जब नित्यानंद और चैतन्य लीलाएं कर रहे थे। उस समय नित्यानंद का विवाह थोड़ी हुआ था, तो वो संबंध तो बाद में हुआ ना, है ना। तो अभी तो श्री चैतन्य ने अभी अभी संन्यास लिया है ना। तो संन्यास लेकर के वृंदावन की यात्रा में जब गए थे, लेकिन वृंदावन नहीं गए, राम के लिए ग्राम में रूप सनातन से मिल करके और जगन्नाथपुरी लौट आए। तो रास्ते में शांतिपुर आए, जगन्नाथपुरी लौटने से के पहले राम के लिए से आए शांतिपुर, और शांतिपुर में जानते हैं कौन है, अद्वैताचार्य हैं। शांतिपुर अद्वैताचार्य ने भी अपना वो घर छोड़ दिया था जो नवद्वीप में था, क्योंकि भगवान जब संन्यास लेके चले गए तो अद्वैताचार्य ने भी वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि भगवान वहाँ नहीं आएंगे, संन्यास ले लिया है उस स्थान में नहीं आएंगे। तो फिर ये भक्त लोग भी जो है उस स्थान को छोड़ करके चले गए। तो शांतिपुर में अद्वैताचार्य रहते हैं। तो शांतिपुर में आए भगवान चैतन्य, और फिर शांतिपुर से नीलाचल जाने के पहले अंबिका कालना जाने का संकल्प किया कि गौरीदास पंडित से मिला जाए। तो नित्यानंद प्रभु को साथ लिया और हरि ध्वनि करते हुए गंगा के किनारे आए। एक नाव खड़ी थी उसमें बैठ गए, कोई नाविक नहीं था, एक नाव खड़ी थी तो उसमें बैठ गए और नाव को प्रवाह में छोड़ दिया। चप्पू स्वयं चलाया भगवान चैतन्य, स्वयं चप्पू चलाया है? और अंबिका कालना पर पहुंचकर नाव से उतरे और चप्पू हाथ में लेकर गौरीदास के घर के बाहर एक इमली वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। वो अभी भी हैं, हम गए थे तो वो देखा है चबूतरा, और बहुत अच्छा वहाँ निर्माण कार्य हुआ है और लीलाओं के जो है बड़े सुंदर चित्र बने हैं। गौरीदास की भगवान चैतन्य के साथ जो लीलाएं हुई हैं उनके बहुत मतलब दृश्य बने हुए हैं। वो चबूतरा भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। इमली का वृक्ष भी बहुत बड़ा सुंदर है ना। इमली वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठ गए और गौरीदास को बुलाया, है ना। अनेक दिन के बाद गौरीदास ने महाप्रभु को नित्यानंद के साथ देखा, फिर अपने घर, ओहो मेरे घर में आए, पहली बार आए घर में, घर में तो कभी आए नहीं। ये जाते थे मिलने के लिए तो नवद्वीप में जाते थे, लेकिन यहाँ आ गए, है ना, और पहली बार आ गए और दोनों आ गए, है ना। तो दुपट्टा फहराकर आनंद से नाचा, खूब नाचे, दुपट्टा फैला करके खूब नाचे आनंद में। फिर दोनों के चरण पकड़कर प्रेम में रोने लगे। अनेक लोग प्रभु के दर्शनों को जुड़ गए, बहुत भीड़ हो गई, है ना। और गौरीदास पंडित ने परम आदर सहित दोनों की पूजा की। महाप्रभु ने गौरीदास को यह कहते हुए ऊपर उठाया, गौरीदास नौका को स्वयं चप्पू से चलाकर गंगा पार होकर तेरे पास आया हूं। देखो ये चप्पू जो है मैंने खुद चलाया और गंगा को पार किया है। ये लो चप्पू तुमको दे रहा हूं, अब तुम जीवों को संसार नदी से पार करो। वो चप्पू भी रखा हुआ है, वो भी दर्शन करने को मिलता है। भगवान ने जो चप्पू चलाया था वो चप्पू रखा हुआ है, इन्होंने इनको दे दिया कि अब इस चप्पू से तुम क्या करो, संसार को, सब लोगों को संसार नदी से पार करो। इतना कहकर महाप्रभु ने इन्हें आलिंगन किया। पंडित के आनंद की आज सीमा न थी। महाप्रभु ने अपनी पाठ पुस्तक गीता भी इन्हें प्रदान की, जो खुद पाठ करते थे गीता का, तो वो इनको दान कर दिया। और वो चप्पू और गीता बीवी अंबिका कालना में विद्यमान है। ये मंदिर उस इमली वृक्ष के नीचे बना हुआ है। इमली वृक्ष का तो चबूतरा अलग है और वो मंदिर अलग है, थोड़ा दूरी पर है ना। अब दो एक दिन महाप्रभु नित्यानंद के साथ वहां से जाने के लिए तैयार हुए, किंतु गौरीदास ने चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मैं आप दोनों को अब यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। क्यों? आप दोनों को अब यहां से कहीं जाने नहीं दूंगा, मेरे भाग्यों और अपनी करुणा से जब आप पधारे, एक तो आपकी करुणा हुई और मेरा भाग्य हुआ तो आप पधारे, तो फिर कहीं जाने का कोई प्रश्न अब नहीं उठता है। अब नहीं जा सकते आप, है ना, नहीं जा सकते। अब तो निरंतर मैं आप दोनों को घेर कर अपनी विविध सेवा राग भोग करूंगा। महाप्रभु ने कहा, गौरीदास हम तो तुम्हारे पास नित्य रहते हैं, अब यहां से जाना चाहते हैं, फिर कभी आकर रहेंगे? भगवान ने कहा, ना। परंतु भगवान के भक्त बड़े हठीले होते हैं और जब अपनी पर आते हैं तो भगवान को हार माननी पड़ती है। महाप्रभु ने नित्यानंद से परामर्श किया कि क्या करें, ये तो ऐसा अड़ गया है, अब क्या किया जाए। नित्यानंद से परामर्श किया, गौरीदास हमारे चलने पर प्राण त्याग देगा, ये तो प्राण ही छोड़ देगा, अब तो फंस गए। भगवान जो है नित्यानंद से कह रहे हैं, अब तो बड़े फंस गए, ये तो प्राण छोड़ देगा। वृक्ष की दो मनोहर मूर्तियां अपनी और एक नित्यानंद की वहां प्रकट की, जो उनके समान अति मनोहर थी। वो अभी भी है वहां, उनका दर्शन जो है अभी भी होता है। वो भगवान ने स्वयं जो है प्रकट की, अब बनाई अपने हाथ से या वैसे बिना प्रयास के ही उन्होंने प्रकट कर दी, तो वो मूर्तियां जो है अभी भी हैं, जो कि देखना मतलब मानव निर्मित नहीं है। कैसी अद्भुत। श्री महाप्रभु ने वे दोनों मूर्तियां गौरीदास को दी और कहने सिंहासन पर प्रतिष्ठित करो, हम इनके इन विग्रहों के रूप में तुम्हारे पास निवास करेंगे। अब क्या दिक्कत है, अर्चा विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, है ना। किंतु गौरीदास कब बहलने वाले थे, वो नहीं बहलेंगे, है ना। हमारे लिए तो अर्चा विग्रह ही जो है बहुत भगवान की दया है कि वो साक्षात दर्शन कहाँ देने वाले, तो अर्चा विग्रह के रूप में उनकी बहुत दया है, लेकिन जिनको साक्षात दर्शन दे रहे हैं अर्चा विग्रह से, वो अब संतुष्ट नहीं होंगे। वो कैसे संतुष्ट होंगे अर्चा विग्रह से? तो भगवान बोले, पंडित ये दोनों हमारे अभिन्न विग्रह हैं, तुमको विश्वास नहीं है तो देखो हम चारों तुम्हारे सामने बैठते हैं और तुम्हारा अन्न व्यंजन साक्षात चारों खाएंगे। हम चारों बैठ जाते हैं, वो तो वैसे खड़े हैं अर्चा विग्रह, हम चारों बैठ जाते हैं, एक तो बैठना कैसे संभव हो सकता है हम चारों बैठ जाते हैं और तुम जो है चारों को खिलाओ, हम चारों खाएंगे, ठीक है ना, हम चारों खाएंगे भोजन। इन चारों स्वरूपों और एक महाप्रभु स्वयं और दूसरा उनका विग्रह, तीसरे स्वयं नित्यानंद प्रभु, चौथा उनका विग्रह के सामने अन्य व्यंजन परोसे, दोनों जोड़ियां बैठ गई। गौरीदास के देखते देखते चारों भोजन करने लगे, यहां तक उनके स्वरूप अभिन्न हो गए कि गौरीदास अब पहचान नहीं पा रहे कौन स्वयं है और कौन अर्चा विग्रह है अब पहचान भी नहीं हो पा रही है कि असली कौन है और नकली कौन है अब ये पहचान नहीं पा रहे हैं। महाप्रभु बोले, गौरीदास अब तो हमें जाने दो, हम यहां से एक जोड़ी तुम्हारे पास रहेंगे। जो ही महाप्रभु नितान कहकर उठे चलने लगे, चारों उठकर चलने लगे, गौरीदास की बुद्धि चकित हो गई, अधीर होकर बोले, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, चारों कैसे चल दिए, चारों के चारों कैसे जा रहे हैं आप लोग? गौरीदास बोले महाप्रभु का एक जोड़ी को जिस जोड़ी को चाहो रख लो, एक जोड़ी रख लो, एक जोड़ी को जाने दो, कौन सी जोड़ी, जो तुम्हारी इच्छा हो जन्म कर्म च मे दिव्यम ऐसे दिव्य कर्म भगवान के, ऐसी लीला अद्भुत है। अब सदा तुम्हारे साथ रहेंगे हम, अब हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, एक जोड़ी जो भी चाहो अपने साथ रख लो और सदा साथ रहेंगे। तो गौरीदास जी ने एक जोड़े के हाथ पकड़ लिए, सिंहासन पर विराजमान किया और दो को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया मतलब आप जा सकते हैं। तो दो को एक एक जोड़े को दंडवत प्रणाम किया, एक जोड़े को सिंहासन पर विराजमान किया। इनकी बुद्धि घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, बार बार देखते हैं। एक जोड़ी गंगा के किनारे की तरफ जा रही है और दूसरी जोड़ी घर में झांक रहे हैं, तो सिंहासन पर विराजमान है, कोई कपट नहीं है, कोई कपट नहीं है, बिल्कुल यहां पर भी है और एक जोड़ी जा रहे हैं, एक जोड़ी यहां है। मतलब वो नहीं है कि फिर कुछ चक्कर हो जाए और गायब हो गए, कुछ ऐसे ही माया मतलब फैला दी, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं ना, हिप्नोटाइज कर देते हैं, तो कुछ नहीं है, हिप्नोटिज्म नहीं है, है ना। इनकी बुद्धि चकित हो गई, लीला रहस्य को समझ ना पाए, किंतु विश्वास हो गया कि दोनों मेरे घर में हैं, दोनों हैं मेरे घर में। अब अति प्रेम से विग्रहों की सेवा पूजा करने लगे, सुंदर मंदिर का निर्माण कराया, चप्पू भी प्रभु के पास रख दिया। और बीच बीच में इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर के आनंद प्रदान करते थे, भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। एक दिन दोनों प्रभु मंद मंद मुस्कुराकर बोले, पंडित तुम्हारे प्रेम की रीति को दूसरा कौन जान सकता है। बोलते हैं भगवान, प्रेम में बेहबल होकर तुम स्वयं भी उसे नहीं जानते हो, तुम तो हमारे सुबल सखा हो। भगवान याद दिला रहे हैं, तुम तो हमारे सुबल सखा हो, यमुना पुलिन में गोचारण के समय जो कौतुक होता था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है, जब गौएं चराते थे तुम्हारे साथ में, तुम्हें याद नहीं है क्या। तो भगवान जो है दोनों कृष्ण बलराम ही है, कहते याद नहीं है तुमको। इतना कहते ही दोनों कृष्ण बलराम के रूप में दिखाई देने लगे, कृष्ण बलराम का रूप बन गए हैं। और मोर पिछधारी गुंजामाला पीतांबर धारण किए हुए, बंसी बेत्र श्रृंग और बलराम हलमुसल धारण किए। कृष्ण बलराम गोप वेश में सामने थे, पंडित छवि देखकर बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर गए, प्रेम में बेहोश हो गए, साक्षात कृष्ण बलराम अश्रुधारा में डूब गए। हा कृष्ण हा बलराम कहकर उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे, जैसे तैसे उन्होंने ही संभाला, उन्होंने संभाला, उठाया, उनको आश्वासन दिया। और चेतन आते ही उन्होंने देखा सिंहासन पर पहले जैसे विराजमान है कौन, गौरांग नेताई, ये गौरांग नेताई है ना। एक दिन इन्होंने अनेक अन्य व्यंजन का भोग लगाया, आज दोनों चुपचाप बैठे हैं वो खा नहीं रहे, गौर नेताई जो है आज भोग नहीं लगा रहे हैं, साक्षात खाते थे ना, तो आज नहीं खा रहे हैं, बैठे हैं चुपचाप बैठे हैं। पहले रोज जैसे साक्षात भोजन ग्रहण करते थे, आज ये बात नहीं हो रही है, नहीं खा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, खा भी नहीं रहे, और कई प्रकार के व्यंजन परोसे हैं लेकिन ना कुछ बोल रहे हैं ना खा रहे हैं, है ना। विनय की प्रणाम किया, कुछ असर ना दे, कुछ असर ना हुआ, बहुत नखरा दिखा रहे हो, बड़ा नखरा है, बोलते नहीं, खा भी नहीं रहे, और विनय कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, नहीं खा रहे, कितना नखरा है। तब इन्होंने भी आँख दिखाई अपनी, क्या अपनी आँख दिखाई, अब विनय प्रणाम करने से अगर नहीं मानते तो फिर क्या करना पड़ेगा, आँखें दिखाना पड़ेगा, आँख दिखाई क्यों, यदि आप बिना खाए सुख अनुभव करते हो तो मुझसे क्यों रसोई तैयार करवाते हो, अगर नहीं खाना है तो रसोई क्यों तैयार करवाई। इतना कहकर गौरीदास मौन धारण कर उठकर एक कोने में जा बैठे, ठीक है मैं भी नहीं खाऊंगा, तुम्हें उपवास करना है तो मुझे भी उपवास, मैं भी उपवास, मैं भी नहीं खाऊंगा, चलो कंपटीशन शुरू। गौरीदास पंडित, भक्त के मान करने पर भगवान को मनाना पड़ता है, दोनों प्रभु मुस्कुराकर बोले, पंडित तुम्हें पहले भी कितने बार कह चुके हैं, इतना अन्न व्यंजन साग मत बनाया करो, तुम्हारा परिश्रम देकर हमें दुख होता है। उसमें बाजार में नहीं मिलता था ना कुछ, वो तोड़ के लाते थे कहां कहां जंगल में, तोड़ तोड़ करके साग लाते थे, कितने प्रकार साग बनाना, वो भी अपने हाथ से सब कुछ बनाना। तो भगवान के तुम्हारा परिश्रम देख करके हमें दुख होता है और तुमको कई बार मना किया, इतने व्यंजन मत बनाया करो। भगवान कह रहे हैं किंतु तुम मानते नहीं हो, अब हम जो है नहीं खा रहे हैं तो फिर बुरा मानते हो। जब हम तुमको मनाते हैं, कहते हैं कि इतना मत बनाओ, तो मानते नहीं हो हैं? तो पंडित ने कहा, प्रभु यदि ऐसी बात है तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, एक ही साग बनाएंगे, आगे से एक ही सब्जी बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो आज तो खाओ। तो बड़े प्रेम से निताई गौर ने भोजन किया। उस दिन के बाद फिर एक या दो साग बना करके भोग लगाते और प्रभु तृप्त होकर साक्षात आनंद पूर्वक ग्रहण करते थे, खाते थे दोनों, गौरताय खाते थे। एक दिन इनकी मन में इच्छा जागी कि किसी तरह सोने के और मणि के अलंकार धारण कराऊं, अब इन और मणि जटित सिंहासन की भी व्यवस्था करूं इनके लिए। इच्छा हुई, अब कहां पैसा कहां है, इच्छा हुई कि सोने का और मणियों का जो है सब श्रृंगार हो, सिंहासन हो। दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि दोनों के स्वर्ण मणि जटित अलंकारों से विभूषित है, दोनों के दोनों सोने और मणियों के जो है आभूषण धारण किए हैं दोनों, और रत्न सिंहासन झलमल झलमल कर रहा है सिंहासन, अद्भुत शोभा देखकर स्तंभित हो गए और मूर्ति बन गए। अब यही मूर्ति बन गए, वो तो हंस रहे हैं, वो तो मूर्ति नहीं है, और ये मूर्ति बन गए अचंभित होकर के, कि मेरी इच्छा थी कैसे मेरी इच्छा पूरी हो गई, क्या हो गया, ये मूर्ति बन गए और वो हंस रहे हैं। जो मूर्ति है वो तो हंस रहे हैं और जो जो मूर्ति नहीं है वो मूर्ति बन गया, अचंभित हो गए, मूर्ति की भांति स्थिर होकर अपलग नेत्रों से देखते रह गए। कहां से आए ये आभूषण, किसने पहनाया, मैं तो मन में ऐसी इच्छा कर रहा था, मेरी सामर्थ्य कहां है कि ऐसे वस्त्र और आभूषण और सिंहासन आपको दूं, मेरी कहां सामर्थ्य है। इतना विचार करते प्रभु ने कहा, मुझे तो फूलों के जो जंगली फूल हैं उनके आभूषणों में सुख मिलता है, तुम जंगल के फूलों से मुझे जो श्रृंगार करते हो वो मुझे उसमें सुख मिलता है। इन्होंने झट फूलों के नाना प्रकार के आभूषण तैयार किए, एक एक बनमाला लंबी जो चरणों तक आ सके, पैरों तक, कहाँ तक, गले में पहनाए और पैर तक पहुंचे, ऐसी माला तैयार की और दोनों को फूलों के आभूषण पहनाए, वनमालाएं धारण कराई और एक दर्पण लाए और दोनों को दिखा करके आनंदित करने की, अब देखो अपना श्रृंगार कैसा लग रहा है, पसंद है कि नहीं है, दर्पण लाए दिखाया दर्पण और अपने दर्शन करके दोनों आनंदित हो गए कि हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, दर्पण में देखा ना अपना श्रृंगार दोनों ने, तो बोले हाँ ये अच्छा लग रहा है हमको। कैसा अद्भुत प्रेम में चरित्र है, अंबिका कालना में श्री श्री गौरताय विग्रह हैं, आदि विग्रह हैं, दूसरा गौर विग्रह वो है जो पूर्व देश में जाते समय प्रभु ने सची माता को दिया था, वो अलग घटना है, सची माता को दिया था, वो दक्षिण ढाका में सेवित है ना। तो इस तरह से श्री ये गौर विग्रह जो है अभी तो असंख्य गौर विग्रह हैं, लेकिन भगवान चैतन्य के समय में कुछ थोड़े ही अर्चा विग्रह थे चैतन्य महाप्रभु के, तो बताई गई कि भगवान चैतन्य के समय में, मतलब ये चैतन्य के समय में और चैतन्य ने स्वयं प्रकट किए अंबिका कालना में, इनका जो अभी भी दर्शन होता है ना। तो इस प्रकार से हमने गौरदास पंडित के बारे में कुछ चर्चा की है और बहुत दिव्य है, बहुत आनंद विस्मित करने वाली घटनाएँ हैं। अब आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न है, कोई चर्चा, मैं प्रश्न करूं ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो गौरीदास पंडित पिछले जन्म में ब्रजलीला में कौन से सखा हैं, कौन बताएगा, सुबल सखा है, हरि बोल, सुबल सखा है ब्रजलीला में, गौरलीला में गौरीदास पंडित हैं। अच्छा, भगवान चैतन्य नित्यानंद के साथ में जब अंबिका कालना में आए तो उसके पहले कहाँ गए थे, कौन बताएगा? पहले कहाँ गए थे अंबिका कालना में जब आए? है जी, राम के लिए गए थे, जाना था वृंदावन लेकिन राम के लिए से वापस आए, हरि बोल, राम के लिए गए। अच्छा, राम के लिए से अब जगन्नाथपुरी जाना है तो रास्ते में कहाँ ठहरे थे पहले? शांतिपुर में, शांतिपुर में कौन रहते हैं? अद्वैताचार्य हैं, तो वहां मिले, और शांतिपुर से अब जगन्नाथपुर जाना है तो सोचा कि इनके स्थान में जाएं, हैं अंबिका कालना में, तो यहां पर आए, है ना। अब अंबिका कालना में जब आए तो गौरीदास पंडित का सौभाग्य, अपना सौभाग्य मानने लगे, कैसा सौभाग्य? असीमित सौभाग्य, असीमित सौभाग्य, और इनकी दया भी असीमित है, असीमित दया, हाँ। और पहली बार आए है ना, तो खूब सेवा की, दो तीन दिन सेवा की। अब भगवान क्या बोले, भगवान क्या बोले उनसे? जाना है, जाना है। तो गौरीदास पंडित क्या बोले, अगर आपको जाना है तो मुझे क्या करना है? मुझे प्राण छोड़ना है। अगर आप जाएंगे तो मुझे प्राण छोड़ना है। तो चैतन्य जो है अब दुविधा में पड़ गए, तो नित्यानंद के साथ में अब विचार विमर्श किया, और फिर क्या निष्कर्ष निकाला, क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? इधर, हाँ आप बताइए, क्या करना चाहिए? विग्रह के रूप में रहेंगे, विग्रह के रूप में, हरि बोल, विग्रह के रूप में रहेंगे, है ना, विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, है ना। अच्छा, तो भगवान ने जो है अपना और नित्यानंद प्रभु का बिल्कुल बिल्कुल पूरे उसी आकार में विग्रह बनाया, है ना, बनाया, और कहा कि विग्रह के रूप में तुम मुझे रखो। लेकिन जब वो तैयार होंगे, वो इसके लिए जो साक्षात भगवान की सेवा करे वो क्या तैयार होगा? हम लोगों के लिए तो बहुत आनंद सौभाग्य की बात है, अर्चा विग्रह मिल गए, लेकिन जो साक्षात भगवान हैं, है, बातें करते हैं उनसे, है ना, तो वो अब कैसे अर्चा विग्रह के रूप में बोले? नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, आप रहें मेरे साथ। तो फिर भगवान ने विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले क्या बोला, कौन बताएगा? हाँ माता जी, हाँ बोलिए, हम चारों को बैठाओ, हम चारों बैठ जाते हैं और हम भोजन करेंगे, भोजन कराओ चारों को। तो चारों को भोजन कराया, चारों भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते अब गौरीदास को अब याद ही नहीं रहा कि कौन असली है और कौन निर्मित है, याद ही नहीं रहा कौन असली है कौन निर्मित है, बातें कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, असली हा? और निर्मित का कुछ पता नहीं चला, है ना। और भोजन कराने के बाद फिर अब भगवान बोले कि अब क्या करो, अब तुम्हें क्या करना है? एक जोड़ी, दो दो में से कोई एक जोड़ी अपने पास रख लो, एक जोड़ी को जाने दो और एक जोड़ी अपने पास रख लो, है ना। तो जो बोले थे, जो बोल रहे थे, उन्हीं के हाथ पकड़ लिए कि आप रहो, और दूसरी जोड़ी को दंडवत प्रणाम किया, तो वो जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं तो गौरीदास पंडित अब फिर ससंकित, बड़े शंका में आ गए, हैं कि कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है। तो कहां पर खड़े हुए, कौन बताएगा? अपने दरवाजे पर खड़े हुए, जहां से वो भी उनको भी देख रहे हैं, गंगा के किनारे जा रहे हैं, और अंदर भी देख रहे हैं, अंदर भी हैं, कोई कपट या जो है माया या इंद्रजाल कुछ नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है, है ना। इस प्रकार से गौरीदास पंडित के साथ, और भगवान स्वयं बातें करते हैं उनसे, है अपने का अपना जो है अपनी याद भी दिलाते हैं, है कि हम कौन हैं पिछले जन्म के, और तुम कौन हो पिछले जन्म के, याद करो, अपना रूप भी दिखाते हैं, कृष्ण बलराम का रूप भी दिखा दिया, है ना। तो रूप को देख करके गौरीदास पंडित तो क्या हो गया, मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए. और जब एक दिन इनको जो है इच्छा हुई, मन में इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई थी मन में, हाँ जी, इनको जो है सोने और मणियों का जटित सिंहासन होता और इनके लिए आभूषण भी होंगे, होते सोने और मणियों के, तो कितना अच्छा होता, ऐसा सोचा. लेकिन सोचा, लेकिन क्या सोचा कि हम तो नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा हुई है ना. तो अगले दिन जब दर्शन किया तो क्या देखा, सब वैसे ही आभूषण, वैसे ही सिंहासन, सब कुछ है ना. तो उसको देख करके अब ये मूर्ति बन गए और भगवान हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं. और ये पूछते हैं कि आपको कहां से मिला, तो भगवान क्या बोले, भगवान ने क्या उत्तर दिया, कौन बताएगा, हाँ जी, हाँ, हमको तो जो है श्रृंगार वो ज्यादा अच्छा लगता है, जंगल के फूलों के आभूषण बनाओ, जंगल के फूलों की माला बनाओ, जंगल ही था ना वो सब, अभी अंबिका कालना बहुत बसा हुआ है, जंगल ही था, तो जंगल के फूलों की माला, जंगल के फूलों के आभूषण वो पहनाओ. तो उन्होंने फिर आभूषण बनाए, पहनाए और फिर दर्पण दिखाया. क्यों दिखाया दर्पण, अपना श्रृंगार देखें, है ना. तो बोले हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, भगवान को दर्शन दिखाए. और रोज इनको कई प्रकार के व्यंजन बना करके दे देते थे. अकेले जंगल से साग भी जो है उखाड़ना, काटना, बनाना, और उन दोनों गैस थोड़ी थी कि बहुत आसानी से बन जाए. आजकल तो सब गैस में सब कुछ हो जाता है, और समय नहीं था, और समय तो वही पत्थर के बीच में लकड़ी रखो और फूको, लकड़ी जलाओ और धुआं खाओ, कितना परिश्रम होता था और कितनी देर लगती थी, है ना. और सब साग बनाते थे, और जब बनाया और रखा, कई प्रकार के व्यंजन रखे, तो उस समय वो नहीं खा रहे हैं, उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, कौन बताएगा क्या बोला, हाँ माता जी, नहीं, इन्होंने गोरीदास पंडित ने क्या बोला,
मैं भी मौन रखूंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी उपवास.
हाँ, पहले तो बहुत मनाया कि खाओ खाओ, है ना, जब नहीं खा रहे हैं तो बोले कि अगर इतना नखरा है तुम्हारा तो मैं भी कम नहीं हूं, ठीक है, मैं भी बैठा हूं, है, अनशन करके, जैसे नेता लोग अनशन करके बैठ जाते ना, आमरण अनशन, ठीक है मैं भी बैठ जाता हूं. तो फिर बोले, फिर गौर नेता क्या बोले,
हाँ, हमें बड़ा कष्ट होता है कि आप,
हमें कितने बार तुमको बताया और तुम मानते नहीं हो, क्या बताया, इतने ज्यादा व्यंजन मत बनाया करो. अकेला व्यक्ति जो है तोड़े का भी सब ढूंढना है, जंगल में ढूंढना भी, कहाँ कौन सी साग लगी है, ढूंढना है, काटना है, तोड़ना है, और फिर धोना है, फिर काटना है, फिर बनाना है, कैसे, तुम्हारा परिश्रम देखिए हमें दुख होता है. और जब बार बार मना किया, मानते नहीं हो, है ना, तो फिर गौरीदास क्या बोले, आगे से क्या करेंगे, हाँ, एक या दो साग बनाएंगे, ज्यादा नहीं, अब आप तो आज तो ग्रहण कर लो. तो फिर ग्रहण किया, तो भगवान जो है साक्षात उनके साथ ऐसे थे जो बातें करते थे, है ना. तो हाँ, आपको कुछ
प्रश्न, ये चैतन्य महाप्रभु उस वक्त संन्यास लेकर आए थे, जो विग्रह है संन्यास रूप में, आप बताए थे ना कि दोनों विग्रह एक जैसे थे,
हाँ,
तो ये संन्यास लीला के बाद का है,
हाँ, संन्यास लीला के बाद का है, ये संन्यास लीला के बाद की घटना, वो अब श्रृंगार करते हैं भगवान का अपनी इच्छा से, तो श्रृंगार जो है जैसे चाहो भगवान स्वीकार करते हैं श्रृंगार, है ना. अब गौर नेताई का थोड़ी संन्यास बेस में हम श्रृंगार करते हैं यहाँ भी, है ना. तो श्रृंगार जो है हम करते हैं तो उनका अपनी इच्छा से करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं श्रृंगार को, ठीक है ना. धन्यवाद. श्री गौरीदास पंडित तिरो भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री रूप गोस्वामी तिरो भाव तिथि महामहोत्सव की. सब लोग बैठिए, थोड़ा सोचना है.
अभी अभी आया
नहीं मतलब हरे कृष्णा। तो आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि आज के पवित्र दिन के समय जब रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव है और गौरीदास मंडी जी का तिरुभाव है, तो प्रभु जी ने द्वारा लिखित ये पुस्तकें कितने भक्तों ने देखी है। श्री भगवान ने कहा तो प्रभु जी आपको जानकर अति हर्ष होगा कि प्रभु जी ने ये पूरा पुस्तकों का संकलन कर चुके हैं। प्रभु जी ने पूरा 18 अध्याय पूरा समाप्त कर चुके हैं व्याख्या अपनी। तो प्रभु जी के ऊपर श्री रूप गोस्वामी जी पूरी गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने इतने सालों से हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं और इतनी सुप्रसिद्ध पुस्तक जो है व्याख्या जो प्रभु जी ने दी है। और आज 18 अध्याय पूरे हो चुके हैं, इसके 15 अध्याय तक का संकलन हो चुका है, पुस्तक निरूपांकरण हो चुका है जो कि BBT में अवेलेबल है। तो आज के दिन ये पुस्तक जो भी लेना चाहे प्रभु जी साइन करके दे सकते हैं। और 18 अध्याय अभी पूरे पुस्तक रूप में नहीं आएंगे, बहुत जल्दी ही पुस्तक रूप में आ जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इसमें बहुत सुंदर रूप से व्याख्या की गई है, कथा रूप में हर एक श्लोक की प्रभु जी की अनुभूतियां भी इस पे हैं। तो आप सभी जो लेना चाहते हैं इसे ले सकते हैं। और प्रभु जी से बहुत हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी इसी कार्य को आगे बढ़ाते रहें और हमारे को अपने साथ साथ भागवत जी का भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी बहुत थोड़े समय के लिए अभी यहाँ प्रस्तुत हैं, आप सभी जो साइन करवा के लेना चाहते हैं तो जल्दी ले सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसका प्राइस क्या होगा? तो 13वें अध्याय का जो पुस्तक है वो 100 रुपए का है और 15वें अध्याय का 80 रुपए का, लिमिटेड एडिशन है यहाँ पे। हरे कृष्णा।